हम चर्चा कर रहे हैं, क्रम को आगे बढ़ाएंगे। मध्य लीला के छठे अध्याय का शीर्षक है सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति, और 143वां प्यार जो है ये बोर्ड पे है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ब्रह्म होते जन्मे विश्व ब्रह्मे ते जीवाय से ब्रह्मे पुनरपि हाय जाय धन्यवाद। शब्दा धन्यवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभात के द्वारा श्रील प्रभात की ब्रह्म होते पर ब्रह्म से जन्मे उत्पन्न होता है विश्व सारा विश्व ब्रह्मेते परम सत्य में जीवाय विद्यमान रहता है शे उसी ब्रह्मे परम सत्य में पुनरपि फिर हाय होकर जाए जाता है लाए प्रलय को। धन्यवाद, धन्यवाद सुनिए। इस विराट जगत की प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उत्पन्न होती है, उसी में रहती है और प्रलय के बाद पुनः परम सत्य को में प्रवेश करती है। तात्पर्य तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, सारा भौतिक जगत परम ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म सूत्र का भी प्रारंभ इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक से होता है। जन्मादिस्सह यतः परम सत्य वे है जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। ये परम सत्य कृष्ण है। भागवत गीता के दसम स्कंध के आठवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का उद्गम, मुझसे ही हर वस्तु उत्पन्न होती है। अतएव कृष्ण ही आदि परम सत्य है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भागवत गीता में ही नवे अध्याय के चौथे श्लोक में कृष्ण फिर कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगतर वक्त मूर्तिना, यह सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप से मेरे द्वारा व्याप्त है। और जैसा कि ब्रह्म संहिता के पांचवें अध्याय के 37वें श्लोक में पुष्टि हुई है गोलोके व निवसति अखिलात्मभूतः, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं फिर भी वे सर्वव्यापक, उनका सर्वव्यापक पहलू निराकार माना जाता है क्योंकि सर्वव्यापकता में भगवान का साकार रूप दिखाई नहीं देता। वास्तव में हर वस्तु उनके शारीरिक तेज की किरणों पर आश्रित। ब्रह्म संहिता के पांचवें अध्याय के 40वें श्लोक में भी आया है यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटेषु अशेष वसुधादि विभूति विन्नम, भगवान के शारीरिक तेज की किरणों के कारण लाखों लोकों की सृष्टि होती है, जिस प्रकार सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति होती है। धन्यवाद। तो ये जैसे यहाँ पर तात्पर्य हम देख रहे हैं और प्रसंग भी जो चल रहा है कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं जो कि मायावादियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका, तो वो उनके साथ जो है अभी चैतन्य महाप्रभु का ये वार्तालाप चल रहा है और महाप्रभु बोल रहे हैं काफ़ी देर से। तो अभी ये पहला सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये बिल्कुल अभी बिल्कुल शुरुआत है। तो महाप्रभु ने बोलना शुरू किया है तो अगर इसमें इसके क्रम को देखें, अभी तक जो क्रम है एटलीस्ट वो भी हम देख पाएंगे कि शुरुआत में महाप्रभु पहले चुप रहे, सुनते रहे, सात दिन तक सुनते रहे, गुड लिसनर है ना। और अंग्रेजी में कहावत भी है, हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य को इतना क्रूड नहीं बोला जा सकता, पर अंग्रेजी में कहावत है कि आई मीन नथिंग आंसर्स बेटर अ फूल देन अ साइलेंस। कि एक मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करना जो है अपनी मूर्खता का सबब है, तो उसके सामने जो है मुंह बंद करके रखना जो है उससे बड़ा तमाचा उसको कोई बढ़ता ही नहीं। तो सात दिन तक जो है वो चुप रहे, तो फिर इनसे उनसे तो बर्दाश्त हो गया सात दिन तक चुप रहना, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ सात दिन तक इनका चुप रहना महाप्रभु का। तो अब तो इसी से पता चलता है तो खैर, तो अब महाप्रभु जब बोलना शुरू हुए हैं तो महाप्रभु ने सबसे पहले देखे, अगर क्रम अगर इसका देखें तो सबसे पहले महाप्रभु ने शास्त्रों को, वेदों को एस्टैब्लिश किया। तो ये एक प्रीचिंग का जो है सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले शास्त्रों को जो है एस्टैब्लिश किया जाए, वेदों को जो है उसको स्थापित किया जाए कि देखो जी प्रमाण जो है वो ये, फिर प्रमाण के आधार पर, सबूत के आधार पर जो है केस लड़ा जाए। तो पहले ये, अब अगर शास्त्र का वो स्थापित ना करके, वेदों को स्थापित ना करके ये वाली बात शुरू हो जाती, भगवान से कुछ निकलता है, निकल ये होता है वो होता है, तरह तरह की बकवास शुरू हो जाएगी जी, कोई चीज निकल, फिर वो उल्टे सीधे आर्गूमेंट्स होंगे भाई, एक पन्ना है उसको पहले चार टुकड़ों में फाड़ दिया, उसमें से एक पीस निकाल दिया तो पन्ना कम हो गया, कि कॉमन सेंस के लिए समझ आती है बात। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो तुम्हारे कॉमन सेंस के हिसाब से समझ आती है, वेद हैज गॉट इज ओन सेंस, तो वो उसे उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, आपको आगे लेके जा रहे हैं उस चीज को। तो तब जाके ये श्लोक जो अभी है कि बेसिकली इस श्लोक अगर इस प्रयार को देखा जाए, ये जैसे उपनिषदों में जैसे आता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमस्य, तो ये उस श्लोक के जैसे ही है, वही सेम चीज है कि मतलब जो भी भगवान से निकाल लिया जाए तब भी भगवान बराबर रहते हैं। जैसे जैसे सूरज है तो भाई उससे तेज भी निकलता है, उससे प्रकाश भी निकलता है, तो सूरज उतना ही रहता है, उसका कोई मास में डिफरेंस नहीं आता, वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं आता। तो इसीलिए तो ये बात समझाने के लिए जो है पहले वो एस्टैब्लिश करने की जरूरत है शास्त्र। इसीलिए इससे ये भी पता लगता है खासतौर पर प्रचारकों के लिए कि वो उनका टारगेट क्या होना चाहिए। अगर सबसे कम समय में जो है अगर आपने अपने प्रतिद्वंदी को धराशायी करना है शास्त्रार्थ में, तो उसका सबसे पहला सबसे आसान तरीका है उसको लॉजिक से शास्त्र तक ले आओ, बस लॉजिकली शास्त्र तक ले आओ, उसके बाद शास्त्र आने के बाद जो है फिर वो ढील नहीं पड़ेगा, मतलब फिर सीधी से बात पूछनी उसे, डू यू फॉलो शास्त्र, क्या आप शास्त्र को मानते हैं, हाँ मानते हो, तो ये तो इसलिए तो ये सबसे पहले देखा जा रहा है वेदों पर ले आए। जैसे वेदों पे ले, फिर वेदों पे लाने के बाद अब उससे पहले कि फिर बोले नहीं जी मुझे मालूम है, ये सीधा ही बोला कि देखो जी आपको वेद मालूम है, डिक्शनरी मालूम है, तो ये शब्द है इसका, ये इसे कहते हैं मुख्य वृत्ति। भक्ति सदास्त ठाकुर बताते हैं एक चीज को समझने की जो है तो दो विधियां होती है, मुख्य वृत्ति ग्रहण वृत्ति। तो मुख्य वृत्ति का मतलब अभिधा वृत्ति, यानी कि अभिधान, यानी कि डिक्शनरी, एक शब्द का ये मतलब है, तो डिक्शनरी से प्राइमरी मीनिंग लिया जाता है। सेकेंडरी मीनिंग तब लिया जाता है, गौण वृत्ति तब लिया जाता है जब कोई इन्फरेंस लिया जाता है, नहीं इसके साथ ये तालमेल बैठ नहीं रहा इस बात का, तब सेकेंडरी मीनिंग समझा जाता है, सीधा ही सेकेंडरी मीनिंग नहीं ले लेते। तो इस तरीके से तो ये तरीका है, मतलब ये लगा लीजिए कॉमन सेंस है। तो वो कहे कि भाई वेदों में जो है जब कोई स्टेटमेंट दी जा रही है, कोई उक्ति दी जा रही है, तो वो मुख्य वृत्ति ऐसे होती है कि जो आप देखो उसके अंदर से प्राइमरी मीनिंग क्या निकलता है, बस ये, तो ये प्राइमरी मीनिंग निकलता है। तो ऐसे करके वो अब वो बात करने, अब आसान यहां तक लाना आसान है कि जी शास्त्रों में बताया गया कि भगवान स्रोत है, जिसमें से उनका सबका उद्गम भी उसी में से होता है, उसी में वो रहते हैं, विद्यमान भी रहते हैं और प्रलय के बाद उसमें चला जाता है, तब बात करना आसान है। तो शुरू में शुरू हो जाएगा जी नहीं जी कहां से उद्गम होता है, किसने देखा है, कहां रहता है, कहां चला जाता है। तो ये महाप्रभु ने जो है ये सिंपल सा तरीका जो है इख्तियार किया है और अब ये आगे जा रहे। तो अब पूरा जो ये चर्चा चल रही है, तो अभी मायावाद दर्शन पहले बोला गया, अब उसका धीरे 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 जो है महाप्रभु चॉप करने लगे, उसको धीरे 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 हटाएंगे। तो ये क्योंकि ये एक मतलब मायावाद से समझौता कर लेना, ये कभी भी जो है प्रचार का जो है प्रचार की सफलता की कसौटी नहीं मानी जा सकती। हमारा प्रचार बहुत सफल था जी, हम जाके कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। दो उसने हमने उसकी दो बात मान ली, उसने भी हमारी दो बात मान ली, विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दिया। दैट इज नॉट प्रीचिंग। तरीका कुछ भी हो सकता है, तरीका कुछ भी, वो स्ट्रैटेजी कुछ भी हो सकती है कि आपने चॉप कर दिया उसको, आपने प्यार से मनवा ली उससे मतलब बात, या वो उसको ऐसा मौका ही नहीं दिया कि वो जो है अपनी उस प्रकार से बातें रखे और दूसरों को जो है गुमराह करे। वो आपकी प्रचार की शैली हो सकती है, पर ये प्रचार की शैली में कभी भी जो इसका शुमार नहीं होता कि जी उनकी भी बात मान ली, हमारी भी बात मान ली, हमने उनकी बात मान ली, उन्होंने हमारी बात मान ली, कौन किसकी बात मान के आया, क्या फॉलो होने वाला है, आगे कुछ नहीं पता। तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर प्रीचिंग। तो ये मतलब एक जरूरी चीज है। तो अगर कोई भगवान को मतलब जैसे एक सीधा सा उदाहरण दे सकते हैं, भाई सूरज है, अगर किसी को कोई अपनी स्पीड सूरज के बराबर कर ले, यानी कि सूरज इधर से चढ़ा जी इधर गया जा रहा है, तो इतनी स्पीड पे जो अपनी गाड़ी चला ले या हेलीकॉप्टर चला ले कुछ भी, कि वो उसी स्पीड के साथ जो जाता जा रहा है, तो उसके लिए कभी भी रात नहीं होगी, वो दिन में ही रहेगा। उसी टाइप से अगर कोई भगवान को फॉलो कर ले, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर, निर्देशों को फॉलो कर ले, वो टाइम ही नहीं आएगा कि वो इंस्ट्रक्शन से आगे पीछे हो गया और माया ने पकड़ लिया। यानी कि भगवान कृष्ण सूर्य से माया अंधकार, इसका मतलब ही जय श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इसका मतलब ही यही है, मतलब इसका एक तरीका ही है समझने से कि भाई कृष्ण जहां पर जहां कृष्ण तहां ही माया अधिकार, यानी कि जहां पर यानी उल्टा, यानी अगर उल्टा ले लें तो जहां पर कृष्ण नहीं है वहां अधिकार होगा। तो अगर कृष्ण रहने का मतलब क्या है कि कृष्ण के निर्देश, तो जहां जहां कृष्ण के निर्देश नहीं देखे जा पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे, वहां वहां उस वक्त उस दौरान जो है हम माया के चपेट में होंगे, सीधी सी बात। तो अगर एक 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 जोड़ते जाए, किस तरीके से ऐसा हो जाए कि कड़ी बन जाए, एक श्रृंखला बन जाए कि ये भी भगवान का निर्देश है, फिर ये निर्देश है, एक वी आर जंपिंग फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण टू अनदर इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण, वी आर नेवर इन वन, वी जंप आउट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण देन वी विल प्लंज इन टू वन। तो अगर एक निर्देश है ऐसे, दूसरा निर्देश, तीसरा निर्देश, चौथा निर्देश, ऐसे करके अगर दिनचर्या बन जाती है तो हम माया में नहीं होते। तो ये एक तरीका है मतलब कि कैसे हम हमेशा वी कैन ऑलवेज रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी कैन ऑलवेज रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है वो इस टाइप से जो है उसकी कड़ी बनी, तो आसान हो जाता है ये करना। तो जैसे मतलब ये मायावाद सिद्धांत है, वैसे तो इस पर बड़ी सारी चीजें बोली जा सकती है, पर प्रभुपाद जो है सातवें अध्याय भागवत गीता के सातवें अध्याय के 28 श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं कि एक जो मायावादी व्यक्ति है उसको ये बात नहीं मालूम होती कि अपनी संवैधानिक स्थिति को भूलना, यानी कि भगवान के हम अंतर्गत हैं, भगवान के उनके अधीन हैं, तो इस संवैधानिक स्थिति को भूलना ही जो है ये भगवान के कानून का सबसे बड़ा विद्रोह है। जी यहां से कहानी शुरू होती, एक बद्ध जी की कहानी यहां से शुरू होती है। तो जितनी मात्रा में वो भगवान के जैसे ही जितनी मात्रा में भगवान को जब जब वो भगवान के इस सत्ता को भूल जाता है, जैसे ही वो ये छोड़ देता है, उसी वक्त जो है वो माया के चपेट में होता है। और ये मायावाद का जो उसके अंदर ये बनता है, मायावाद पर मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भक्ति विकास महाराज बड़ा अच्छा बताते हैं कि आमतौर पर मायावाद की जब हम मायावाद शब्द इस्तेमाल करते हैं बाहर, तो देखिए ऐसा नहीं कि जो मायावादी हो तो आप बोलते हैं हम मायावादी हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं। ये मायावाद शब्द जो सकता है आप इस्कॉन में अगर सुनते होंगे तो हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा, ये हर जगह सुनने को नहीं मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि आप सनातन धर्म मंदिर में जाओगे तो कोई वहां कोई प्रवचन चलाओ तो बोलेंगे मायावाद क्या होता है, दे डोंट यूज दिस वर्ड। ये खासतौर पर गौड़ीय वैष्णव इस्तेमाल करते हैं इस शब्द को, ज्यादा लोग इतना मायावादी शब्द इस्तेमाल नहीं करते। वैष्णव अगर आप और ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देख लो तो उसके परिप्रेक्ष्य में जो इस्तेमाल करो, बाहिक लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसा नहीं, अब जो मायावादी, जिनको हम मायावादी बोलते उन्हें नहीं पता कि ये लोग हमें मायावादी बोलते हैं। ये भी जान लीजिए, कई कथा बोलेंगे आप मायावादी हो, मायावादी हो तो कौन सा वाद है, समझ नहीं आया। एक संवाद सुना था, विवाद सुना था, अपवाद सुना था, तो दे मे नॉट नो अनलेस एंड अंटिल उनका पाला हमसे पड़ा है पहले। तो ये तो मायावाद का मतलब ये नहीं है कि जो लोग आमतौर पर जो लोग सब लोग सुनते भी तो कई बार स्थिति जी मोह माया है जी, बंधन है जी, है ना, दुनिया माया है, मैं भी माया में हूं, सब माया है। नॉट मायावाद, मायावाद का मतलब है कि जब, यानी कि जब भगवान के तत्व की जब गलत पहचान शुरू होती है, यानी कि वो भगवान को भगवान नहीं समझता, तो ऐसे व्यक्ति को जो है वो व्यक्ति मायावाद के चपेट में आता है। यानी कि द फिलॉसफी यहाँ की भगवान का, आई मीन मोटे मोटे तौर पे समझे कि भगवान का रूप नहीं, बेसिकली भगवान की सत्ता नहीं, भगवान के पास या तो वो शक्ति नहीं है, है तो उसके अगर शक्ति है तो रूप नहीं है, रूप है शक्ति, बड़ा ही कंफ्यूजिंग फिलॉसफी है, बहुत कंफ्यूजिंग फिलॉसफी। तो इसीलिए अब आप उसको बोल सकते हैं मायावाद के अंदर बड़ी सारी चीजें, कोई मायावाद का एक ब्रॉड डेफिनेशन अगर मायावाद के बात का पूछेंगे तो प्रभुपाद बोलते हैं एक्सेप्ट वैष्णविज्म एवरीथिंग एल्स इज मायावाद, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मायावाद, एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद बोल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मायावाद। तो इसीलिए तो ये आई मीन मायावाद क्या है, ये अपने आप में कोई ऐसा नहीं कि इतना सा मायावाद है, मायावाद पूरा भरा हो। एनीवे तो ऑफ कोर्स मायावाद में पीएचडी करने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ, तो पर तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भगवान की विस्मृति, तो अब भगवान की विस्मृति होने के बाद भी वो एक आदमी जीने के लिए कोई एक फलसफा इख्तियार जरूर करता है, किसी एक दर्शन के आधार पर, किस फिलॉसफी के आधार पर जीता है, तो वो फिलॉसफी उसकी मायावादी होती, मायावादी होती। अगर अगर भगवान की भक्ति के अलावा कोई फिलॉसफी विद्यमान है ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज दिस। ठीक है, वेद प्रकार निकालते शून्यवाद भी है जी, निर्वेशिशवाद भी है जी, ये वाद वो सारे वाद एक ही बात। तो ये तो ये जो मायावादी, आई मीन जैसे उस दिन पाटली प्रभु भी यहां से बता रहे थे, तो एग्जांपल भी दिया एक आई मीन क्या कहें उसको, भूतपूर्व स्वामी जी का तो दिया एग्जाम्पल भी। तो फैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चिड़िया है, अगर पालतू, जैसे कबूतर होते हैं, पालतू कबूतर होते हैं कई बार, तो पालतू कबूतर क्या करते हैं, पालतू कबूतर को अगर पिंजरे से आप रिहा कर दोगे, आजाद कर दोगे, उड़ा दो उसको, उड़ाने वो काफी दूर तक उड़ के जाएगा आसमान तक, कुछ देर वहां मंडराएगा, फिर क्या होगा, पलट के वहीं वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि घोंसला नहीं भी है, पिंजरा तो है ही ना, जिसके पास पिंजरा है उसको घोंसले की जरूरत ही नहीं उसको। हाँ समझ ना, क्या क्यों, क्योंकि उसको पिंजरे की आदत पड़ गई है, और उसको ये नहीं पता आजादी का करना क्या है। अभी जो मैं आसमान में आजाद हो गया हूं, बाहर निकल आया हूं, अब क्या, कहां जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं क्या करूं। तो उसी तरीके से जब शरणागति का लक्ष्य ठीक नहीं पता, किसको शरणागत होना है, तो वो जो आदमी है वो शरणागत होने के लिए खुद इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर। आप किसी को शरणागत होना चाहते हो वो तब आप हो सकते हो बशर्ते आप खुद आजाद हो। गुलाम आदमी शरणागत नहीं हो सकता, वो तो गुलाम पहले से ही, और क्या शरणागत होगा। सरेंडर, आई मीन टू सरेंडर समबडी इज अ साइन ऑफ फ्रीडम एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल ऑफ, आई मीन इंडिपेंडेंट विल। गुलाम आदमी शरणागत कभी नहीं हो सकता, इसीलिए भक्ति आजाद करवाती है। माया आजादी के नाम पर गुलाम रखती है, भक्ति गुलामी के गुलामी दिखाकर, शाश्वत गुलामी दिखाकर जीव को आजाद करती है। ये फर्क है, क्योंकि आपको अगर किसी को शरणागत होना है तो आप उस वक्त शरणागति के लिए आपके आप आजाद होने चाहिए। तो इसीलिए तो ये जो बेसिक, तो अब वो आप कबूतर आप छोड़ दिया, कोई भी पालतू जानवर भी होते हैं घर में, जो हम बचपन में घर में कुत्ते पाले हुए थे, तो छोड़ दो बाहर ऐसे जाता था वो घूम फिर के जो है वहीं आ जाता था बाद में। अब उसको आप वफादारी कर सकते हो, ठीक है, अब आप उसको कुछ भी नाम दे दो, है ना, पर एक एक सुलझा हुआ दिमाग का आदमी उसको अव्वल दर्जे की बेवकूफी कहेगा। तो ये तो जो मायावादी का मतलब क्या है, जो उसको मालूम नहीं है कहां तक जाना है, अब आजादी का क्या करूं, मैं आजाद हो गया, मैं मुक्त हो गया जी, अब क्या करूं मुक्त हो गया, आपको भगवान नहीं है, कुछ है नहीं, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ शेल्टर नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ सरेंडर नहीं है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशनशिप नहीं है, तो चलो जी वापस वहीं चलते। तो फिर तो बात फिर वही आती है, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। तो ये बहुत कंफ्यूज, मायावादी मीन्स अ वेरी कंफ्यूज लॉट, जिसको ये नहीं पता कि जब जो मैं चाह रहा हूं जब वो मुझे मिल जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसका मैं क्या करूंगा, बिकम्स लाइक दिस। तो अब एक जीव बद जीव, अब बद जीव का मतलब क्या, बद वो किस चीज से बद है, अपनी इच्छाओं से बद है, और क्या बद है, किस चीज से, और किसी से बद नहीं है, इच्छाओं की वजह से बद है और इच्छाओं से ही बदा हुआ है। हालांकि ये और बात है कि एक जीव जो है, एक क्या कहते हैं जीव को, कि भाई बाल के अगर भाग का 10,000वां हिस्सा है ना, या देखा जाए तो अदना सा टुच्चा सा जीव है, तो उसकी इच्छाएं भी कितनी होंगी, अदनी और तुच्ची इच्छाएं होंगी उसकी। हम कहते हैं जीव की अनंत इच्छाएं होती हैं, अरे अनंत इच्छाएं भी कितनी हो जाएंगी उसकी, अनंत इच्छाएं अनंत शेष की होंगी, जीव की थोड़ी होंगी, यही होंगी तीन चार चीजें, उसी घूमता रहता है, टिक 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 टिक, 84 लाख होनी है, 84 लाख बार घूमने के बाद उसको तीन चार इच्छाएं पूरी नहीं होती उसकी। उसकी इच्छाएं क्या होती है, उसकी सारी इच्छाएं जो चार उंगलियों में तो आ जाती है, कैद हो जाती है, आर निद्रा भय, मैं तो इसके आगे सोच नहीं सकता हूं, क्या इच्छाएं होती है उसकी, यही होती है, जौन से भी इच्छा लाओ इस चार में से एक में फंस जाएगी आगे। टुच्ची जीव की टुच्ची इच्छाएं होती है, मुक्त जीव की होती है कुछ मुक्त इच्छाएं, बद जीव की क्या इच्छाएं होगी। तो बद का मतलब क्या है, ऐसा सिर्फ हाथ पैर बदे हुए, उसकी सोच भी बदी हुई है, उसकी दौड़ जो है बहुत लिमिटेड है। तो अब वो, अब उसकी इच्छाएं हैं, अब भाई अब एक मान लीजिए एक अब इच्छाएं, इच्छाओं को कैसे कैसे मान लीजिए, इच्छाएं कैसे जल रहा है इच्छाओं की वजह से, जी मेरी पूरी नहीं हो रही, जी मेरी पूरी नहीं हो रही, है ना, और बाजी के अंदर होती है जो पुराने दिन जो गुजरे हुए दिन होते बड़े अच्छे लगते हैं उसको, वो जो पहले बचपन था कितना अच्छा था, उधर भी रो रहा होता था तू, ठीक है, अब आने वाले दिन जो आएंगे वो कैसे होंगे, अरे वो बहुत सुहाने दिन आने वाले, अच्छा तो अभी बैठ के जैसे मान ली 2014 में जाके ना पास्ट को वो हो रहा होगा, कोस रहा होगा, फ्यूचर को रो रहा होगा, तो जब 2014 से लेकर 2016 रह जाएगा तो फिर पास्ट को कोसेगा, फ्यूचर को रोएगा, यही होगा बस और क्या होगा। तो ये हो, तो ये उसका होता है, तो यानी कि वो हमेशा ही जो है मतलब उत्तप्त रहते हैं, हमेशा जल रहे हैं। तो एक आदमी जो जल रहा है, मान लो कोई भाई किसी को बुखार है, तो भाई तो क्या करे डॉक्टर, क्या करे उसको, ऐसी दवाई देके मार डाले उसको, क्या करे उसके बुखार का इलाज चाहिए या उसको ठीक करे उसे, इलाज करे उसे। तो मायावाद का मतलब यही है कि भैया अपनी इच्छा को खत्म कर दो, आपकी इच्छा है खत्म कर दो उसको, अब ये ठीक है तो भाई बंदा खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाएगी, बंदा भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना भाई, इच्छा खत्म कर दो, सारी इच्छा खत्म होती है, उसमें एक इच्छा जीने की भी होती है, फिर वो भी खत्म कर दो, सारी खत्म कर दो इच्छा है फिर, है ना। तो फिर ऐसी इच्छा खत्म कहां तक जाएगी ना, इच्छा आपने ये नहीं बोला ना कौन सी इच्छा खत्म कर दो, सारी इच्छा खत्म कर दो, सारी इच्छा होती है, जीने की इच्छा भी होती है, साथ लेने की इच्छा होती है, सारी इच्छा खत्म कर दो, बंदा खत्म हो जाएगा। अब ये करे इलाज उसका, कि भाई ये इलाज करे कि भाई उसको उसको रहने दो, उसकी इच्छाओं को क्योर करो, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, भाई उसकी इच्छाओं को शुद्ध करो, इच्छा प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ डिजायर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, भागवत फर्स्ट कैंटो फर्स्ट आई गेस फर्स्ट चैप्टर में बर्बड़ में है, प्योर फॉर्म ऑफ डिजायर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वही है, इच्छाओं को शुद्ध कर दो, इच्छाओं को भगवान की सेवा में लगा दो, शुद्ध हो जाएंगे, ये तरीका है हमारा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब आगे जैसे अभी ये भी जीव के साथ भी क्या, बदजीव के साथ भी क्या होता है, इसीलिए ये इसीलिए मतलब भक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति की, भक्ति में भी कई पर्याय आती हैं, इसलिए शुद्ध भक्ति की बात करी जाती है। नहीं तो मिश्रित भक्ति से भी या कंडीशनल भक्ति, अब जैसे मान लीजिए एक इंसान जैसे आम आदमी आमतौर पर आते हैं, जैसे मान लीजिए भगवान के पास आया, श्रद्धावान है इसलिए आया, चलो जी यहां तक बात ठीक है उसकी, आया उसने भाई कोई मन्नत मांगी कि भगवान मेरी ये मुराद पूरी कर दो तो जो भी बांटूंगा मैं, नहीं बांटूंगा जो भी है ठीक है, तो मेरी मुराद पूरी कर दो। अब मान लो मुराद पूरी नहीं हुई तब क्या होता है, तो उसका क्या होता है, वो कहता है कि मेरा श्रद्धा टूट गई जी, आस्था टूट गई जी, विश्वास टूट गया जी। तो उसका वो ये नहीं देख रहा है कि उसका जो सरेंडर था वो कंडीशनल था, बशर्ते आप मेरी ये मन्नत पूरी करोगे, मेरी इच्छा पूरी करोगे तो मैं आपको शरणागत कुछ और करूंगा या आगे बढ़ूंगा या जो भी है। तो ये कंडीशनल सरेंडर बहुत घातक है, इसके कंडीशनल सरेंडर में चांसेस कम होते हैं कि आप फुल सरेंडर तक जाओ, ज्यादा चांसेस होते हैं टोटल एथिज्म की तरफ चला जाए आदमी कि भगवान ही नहीं है, मैंने मांगी थी मेरी बात नहीं रखी, बस खत्म हो गया उसका खेल ठीक है। इज अ रिस्की बिजनेस, तो इसीलिए भक्ति में जो है शुद्ध भक्ति के लिए जो है प्रेरित किया जाता है। हालांकि इस सेंटिमेंट का को जो है इसको इसकी सराहना की जाती है, इसका एहतराम किया जाता है, पर ये सेफ नहीं है, ये बहुत जल्दी जो है आदमी को नास्तिकवाद की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जैसी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, दो चार ऐसे उसके साथ एक्सीडेंट हो गए खत्म। तो सर इसीलिए भक्ति मतलब इस क्रिया के अंदर इसलिए बोला जाता है कि आप इच्छा छोड़ के पहले भगवान के सरेंडर के लिए जाओ, बिना कंडीशन के आप भगवान के तरफ जाओ तो आपकी श्रद्धा टिक जाएगी, फिर वो बातें समझ आएंगी भाई क्यों इच्छा पूरी नहीं हुई, करनी थी नहीं करनी थी, क्या करनी थी, तो बात की बात। नहीं तो ये श्रद्धा कोई मामूली बात नहीं, कई बार लोग पूछते भी हैं, अजीब से सवाल भी करते हैं कि हाँ जी आप लोग बताते हो जी ये क्या है, भगवान का नाम ले लो तो आखिरी टाइम में आप भगवान का नाम ले लो मरते वक्त तो आप हो जाएगा जो ना, आप मुक्त हो जाओगे, मिल जाएगी आपको जो भी मतलब मिलनी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे तो प्रॉब्लम स्टोरी हाँ बताया मुझे बताया एक उसमें ना लेक्चर में था प्रभात का, आई थिंक नहीं रूम कॉन्वर्सेशन है, तो उसमें प्रभात बता रहे थे एक बार एक बात होते बता रहे थे, कहते कि मैंने अपने आंखों के सामने देखा है एक बूढ़ी व्यक्ति को, बूढ़ी औरत को, उसके बच्चे जो है उसको बोल रहे थे कि मम्मी क्या कहते हैं एक बार हरे कृष्णा बोलो मम्मी, एक बार हरे कृष्णा बोलो। बूढ़ी ने बोला मेरे पास इतना बोलने की ताकत नहीं है, बोल के मर गई। अब पूरा सेंटेंस बोल गई वो, भैया तू तेरे को दो शब्द बोलने के लिए बोल रहा, अरे कृष्णा तेरा काम हो जाता, तो इतना आसान नहीं है। आदमी जो है ना वो मरते मरते भी जो है कैफियत देता रहेगा, उसमें भी वकालत करता रहेगा, दलील देता रहेगा, ये दो शब्द बोल के राजी नहीं है वो, क्योंकि दैट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ फेथ, लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग, लॉट्स ऑफ कन्विक्शन। तो ये इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इस प्रोसेस के अंदर। तो इसलिए महाप्रभु शुरू वहां से, अब महाप्रभु शुरू में बोले हरे नाम एवं केवलम खत्म, वो ले आएगा ये दलील लिया वो लिया फलान ढमकान बतान चीजें लिया, तो इसीलिए नहीं स्टेज बाय स्टेज ही स्टार्ट ये ठीक है जी, ये समझदार आदमी है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा ज्ञान किसी के पास है और वो ज्ञान जो भगवान की सेवा में लगता है तो वो पाप बन जाता है, फिर वो धीरे धीरे ज्ञान पाप ही बन जाता है आदमी, उसको ज्ञान जो उसके खिलाफ काम करने लगता है, फिर नहीं कहना वही निकाल के ले आएगा ये जी नहीं ऐसा होता है, नहीं जी ऐसा होता, बहुत मिलते हैं हमें बहुत मिलते हैं। तो ये तो आप बंदे का ये ठहर जाए, इसका बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट। सो देन महाप्रभु ने शुरू किया, चलो जी पहले सुनते रहे, उसके बाद शास्त्र बोले, फिर सविशेष निर्विशेष ब्रह्म पे बात होगी, अब धीरे धीरे आगे गाड़ी जाएगी, फिर ग्लोरीज तक जाएगी। तो इसीलिए बोला भी है, इसीलिए हम अगर जब हम सुबह नाम अपराध जो 10 पढ़ते हैं उसके अंदर ही आते, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा को उपदेश करने का अपराध है, क्योंकि उसको नाम की महिमा भी समझ नहीं आएगी, उसके पहले बहुत बैकग्राउंड वर्क चाहिए उसको, बहुत बैकग्राउंड वर्क थी, वन ऑफ देम में भी कि उसको वो हरिनाम ले, तो वही हरिनाम को फिर ऐसे मरते मरते भी आदमी तरह तरह की उसके पास दलीलें होती, तो इट्स नॉट सो ईजी। और प्रभुपाद इसीलिए आमन जैसे पाश्चात्य देश में, हालांकि आमन प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र इस तरीके से है कि पाश्चात्य देश तारी ने निर्विशेष शून्यवादी, तो पर ऐसा नहीं बाबा कि पाश्चात्य देश में सिर्फ बीमारी है, इसकी बीमारी हर जगह, पर पाश्चात्य देश की खासियत क्या है प्रभुपाद ने कई जगह ऑलमोस्ट आई मीन 100 out of 100 यही है कि पाश्चात्य में वैष्णविज्म है ही नहीं। यहां चलो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉर्म्स ऑफ वैष्णविज्म टूटा फूटा मिल जाए, बट वहां नहीं है, तो इसीलिए इट बिकम्स इवन मोर डेंजरस। ऑफ दिस टू दो चीजें, ये साजियावाद और ये मायावाद, इसमें से ज्यादा डेंजरस ही मायावाद है, ये आदमी को भगवान से दूर लेके जाते। साजियावाद का मतलब एटलीस्ट ये कि कम से कम भगवान के बारे में गलत फहमी है उसको, भ्रांत धारणा है उसको भगवान के बारे में, पर एटलीस्ट इतना है कि भगवान तक है वो। पर ये जो मायावाद है ये कुछ दिनों में ऐसा बना देता, मतलब अजीब सा ही हो जाता है वो, बड़ी कंफ्यूजिंग फिलॉसफी होती है। मैं बोलेगा जी नहीं मैं भगवान बन गया, फिर कहते भगवान है नहीं है शून्य है, एक बात पर भी नहीं मतलब था ना, एक बात पर टिक जाता जो तू भगवान है, चल तेरी पहले ये बात मान लेते तू भगवान है, चल फिर उस बारे में बात करें, नहीं जी फिर वो शून्य है, अच्छा फिर शून्य होगा तेरा भगवान, वो नहीं है क्या है मतलब, तो इट्स लाइक ए वेरी वो वन दे विल कीप स्विचिंग देयर पोजिशंस, दे विल कीप स्विचिंग द पोजिशन, दैट्स यूजुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉलोअर्स ऑफ शंकराचार्य, वोटा करते भी नहीं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये उनकी बात कर रहे हैं जो मठों में बैठे होते हैं, वो तो मठों में बैठे हैं ना, उनसे तो इतना खतरा थोड़ी है, खतरा उनसे तो फिर रहे होते हैं बाहर, और कुछ सिंधु पता नहीं क्या बिंदु लगा रहे हैं ये कर रहे हैं वो, इनसे बड़ा खतरा है इनकी, मतलब अगर मैं बहुत कोर मतलब जैसे कहते हैं ना ठेठ भाषा में बोलूं, इनकी कोई जात नहीं है, क्या तुम्हारा स्टैंड क्या है, तुम्हारी किताब कौन सी है ये नहीं पता, तुम्हारी फिलॉसफी कौन सी ये नहीं पता, तू किसको मानते हो नहीं पता, क्या कुछ नहीं पता, सो दिस बिकम्स वेरी आई मीन वेरी डिफिकल्ट कि किस किसको टारगेट करें, किसको एम करें, क्या डिस्ट्रॉय करना है। तो ये है ऑफकोर्स ये बात है कि जो ये तब ये सब चीजें तब है जब हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, और जहां पर आचार की बात आती है तो आचार में भी जो है वो सेम चीज, जहां पर भगवान और भगवान से भक्तों के साथ संबंध के बिना काम चलाने का जुगाड़ देख रहा होता है आदमी, उतनी मात्रा में मायावाद उसके अंदर, और ये बहुत विचित्र बीमारी जो है भक्तों के समाज में भी होती है। ऑफकोर्स नॉट उत्तम अधिकारियों में नहीं मिलेगा ये, ऐसा से नीचे वैराइड प्रोपोर्शंस में ये बीमारी मिलती है, भक्ति में आने के बावजूद भगवान और भक्तों के बिना चलने की कोशिश करना, कैसे बहुत आमतौर पर चीजें, कोई भी काम शुरू कर रहे हैं कोई भी एक, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल इससे पता चलता है, एक काम शुरू किया आपने, नया काम शुरू किया, ठीक है शुरू कर लिया जी, नहीं चल जाएगा अपने आप, किसी के आशीर्वाद की जरूरत है नहीं है आपको, क्या है क्या नहीं है ना, तो ये भक्तों का आशीर्वाद भक्तों का अभिशाप, ऐसे यूजुअली भक्त अभिशाप देते नहीं है बट हाई लग सकती है कई बार, इस पर कोई टोटका नहीं चलता, भक्त के अभिशाप है भक्ति का आशीर्वाद, भक्त ने आशीर्वाद दिया है आपको, भक्तों का आशीर्वाद है, सारे दुनिया के कोई जो मर्जी टोटका कर ले जो मर्जी कर ले वो आशीर्वाद लगेगा 100% आपको, और भक्तों ने कि हाय लगी है आपको अभिशाप लगा आपका, आप जो मर्जी टोटका लगा लो, 10 उंगलियों में 20 नग पहन लो, ये करा लो वो करवा लो, जो करवाने करवा लो, जिसके पिताजी को बुलाने बुलवा लो, वो हाय लगेगी, उससे भगवान भी नहीं बचा सकते। आई रिपीट द स्टेटमेंट, आई कोट द स्टेटमेंट, भगवान भी नहीं बचा सकते, बच क्यों भी बचाते नहीं है, बचा सकते जब है जब वो बचाना चाहते हो, जब बचाते नहीं ना बचाना ही नहीं है, जा उधर ही जाए। सो इट इज लाइक दैट, सो कृष्ण पाशेट में ये चीज बहुत अजीबोगरीब हो जाती है कि भक्तों के बीच में भगवान के सामने रह के भी जो है आदमी अपना ही जुगाड़ उसको सोच रहा होता है कि कैसे करूं, ये कैसे करूं, ऐसे हो जाए, तो ये हमारे अंदर का मायावाद दिखाता है, आवर रेबेलियन टुवर्ड्स कृष्ण, स्टेडफास्ट रिफ्यूजल टू सीक द शेल्टर ऑफ हिज डिवोटीज। तो ये चीज बहुत डेंजरस चीज है, भक्तों के साथ अगर हम उनकी सराहना करना, भगवान की सराहना करना, उनका कंट्रीब्यूशन देखना हमारी जिंदगी में इस मूवमेंट के अंदर, तो इससे ही बीमारी जल्दी जा सकती है, ये मायावाद चला जाता है। एप्रिसिएशन इज द सिंपलेस्ट वे कि अंदर का मायावाद मतलब खदेड़ने का, दूसरे भक्तों की सराहना करना वो सबसे आसान तरीका है, तो जा सकते हैं। खाली पर है, मायावाद का मतलब क्या, शून्य, ये क्या है, खाली है, भगवान नहीं है उसके अंदर, तो क्या वो खालीपन, वो खालीपन भरने का तरीका है, जितनी मात्रा में खालीपन भरता चला जाएगा उतनी मात्रा में हमारे अंदर का मायावाद चला जाता है। तो ऐसे भक्ति में मुझे लगता है कि प्रगति करना आसान होता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है तो हमारे पास 3-4 मिनट है। आई एग्री प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने ब्रह्मवाद शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, शून्यवाद में मैंने चर्चा करी नहीं थी, निर्विशेषवाद का मैंने उल्लेख किया था, मायावाद मैंने ब्रॉडली बताया था। अब जब आपका सवाल है तो जितना मैं समझता हूँ, मायावाद का मतलब है जहाँ पर हम भगवान का जो है, भगवान का अस्तित्व मानते हैं, वेदों को मानते हैं, पर भगवान की सत्ता यानी कि जो कि उनका साकारवाद है उसको नहीं मानते। निर्विशेषवाद का मतलब भी उसके बहुत करीबी है कि उस भगवान के अंदर विशेष विशेषताएं नहीं है, यानी कि विशेषताओं का मतलब क्या है, विशेषताओं से जो है जैसी विशेषताओं की बात आएगी तो यानी कि भगवान की लीला की बात आ जाएगी, तो वो विशेषताएं हम नहीं मानते। तो भगवान को एक शक्ति के रूप में देख सकते हैं, हम भगवान को एक सत्ता के रूप में देख सकते हैं, कि जहां पर जो है आप ब्रह्म का कंसेप्ट है आपके पास, पर आपके पास भगवान का कंसेप्ट नहीं है, परमात्मा का कंसेप्ट नहीं है, तो दैट आई मीन अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, बस ये। बट उसके पीछे कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब उसके अंदर उसका उसकी इच्छाएं, उसका रूप, ये सारी चीजें नहीं लेके चलना। ब्रह्मवाद ऑफकोर्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अक्सर जैसे भागवतम में भी आई हैव द कोट, दिस इज थर्ड कैंटो 29 चैप्टर वर्स नंबर 10 सेज, ययेद यंतव्यम इति वा पृथक भवा स सात्विक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भक्ति कर रहा है सतगुण के धरा पर तल पर उसकी इच्छा है मुक्ति की, मुक्ति की इच्छा के साथ सात्विक की धरातल पर भक्ति कर रहा, तो ऐसा व्यक्ति तो ये अच्छा। और उसमें एक चीज है, बशर्ते उसने भगवान के प्रति कोई अपराध ना किया। सो ऐसा ये कंसेप्ट ब्रह्मवाद कहलाता है, जैसे हम चार कुमारों के अंदर ये चीज देखते हैं, तो ये ब्रह्मवाद, सो फार आई अंडरस्टैंड दिस। और शून्यवाद, ऑफकोर्स शून्यवाद का मतलब जैसे कि जो बौद्ध जो चीज को फॉलो करते हैं, यानी कि सारी चीजें अंत में जाकर जो है एक शून्य में मिल जाते हैं, हर चीज, इच्छाएं, व्यक्ति, जीवात्मा, एवरीथिंग, स्टेट ऑफ नॉन बीइंग जिसको कहते हैं। तो संक्षेप में ये समझता हूं मैं, ये अंडरस्टैंडिंग, ये कंसेप्चुअली। आप ये प्रैक्टिकली देखिए कि इसका अमन ये इस, क्या मतलब इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, जहां जहां भक्ति का लेश नहीं है वहां वहां ये सारी चीजें दिख जाएंगी, और जरूरी नहीं एक दिखे, हो सकता है सारा चीजों का कॉम्बिनेशन दिखे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट।
इसे क्यों नाम किया गया, जैसे ब्रह्मवाद, मायावाद,
जी
शब्द का क्या अर्थ है, क्यों इस्तेमाल किया गया है, और इसमें जो प्रश्न है जो ब्रह्मवाद और मायावाद एक ही नहीं है, अलग अलग है,
अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। ब्रह्मवाद भगवान के प्रति अपराधी नहीं है, मायावादी कृष्ण अपराधी, ये कभी नहीं बताया गया कि ब्रह्मवादी कृष्ण अपराधी।
सिद्धांत क्या है दोनों का, बीच में क्या अलग सिद्धांत?
ब्रह्मवाद हमने जैसे बताया ना, वो भगवान की भक्ति मानता है, भगवान का रूप है चाहे नहीं है, पर एटलीस्ट भगवान, ये नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है, दैट इज द अपराध, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो। एक एक एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे ये गजेंद्र मोक्ष प्रसंग में आते हैं, तो वो प्रॉपर इज यूजिंग द वर्ड सुप्रीम बीइंग, कि वो इसको ये मालूम है कि कोई परम शक्ति, परम परम शक्तिमान व्यक्ति, पर वो है कौन उसको ठीक से नहीं मालूम, बट उसकी प्रार्थना उनके ओर है। भगवान रिस्पॉन्ड किए, उन्होंने भगवान हरि को नहीं बुलाया था, ही जस्ट ही प्रेड कि जो भी परम परम शक्तिमान परम पुरुष भगवान है, परम पुरुषोत्तम ही नहीं बोला, यूज द वर्ड सुप्रीम बीइंग वहां पर प्रॉपर, तो उनके प्रति जो है मेरी ये प्रार्थना। तो इसलिए वहां पर उस तात्पर्य में प्रॉपर बहुत एक्सप्रेसिव ले रहे हैं, किसी देवी देवता को उन्होंने नहीं बुलाया, पर उनको ये नहीं मालूम था क्लियरली कि ये भगवान एग्जैक्टली कौन है, पर उनको ये विश्वास था भगवान है, वो जो भी है वो आएंगे। So that kind of concept, he not have the fullest concept of God, but he has a concept of God. आप ही बता दीजिए। नहीं नहीं, ये शब्द तो महाप्रभु ने इस्तेमाल किया है, गुना हरि जी आत्मनाम शिव मुनि,
आत्मनाम शब्द के ऊपर जो मैंने व्याख्या किए थे, सात व्याख्या किए थे, उसमें ब्रह्म शब्द के लिए
जी जी,
तो यदि वो माया की बोलते तो ब्रह्म शब्द का उच्चारण नहीं करते, सर्वम
नहीं नहीं वही, वो तो सारी ऐसे थोड़ी ना अपने शास्त्र हैं, शास्त्र तो उनके वही है। जी जी विवर्तवाद हो गया ना,
मायावाद है वो कंसेप्ट है, माया को कहते हैं, तो कहते हैं अजा गड़ स्थान
जी, भाई बकरे का स्थान है, मैं दूध नहीं है उसके अंदर,
दूध नहीं, तो माया से सृष्टि नहीं हो सकता, बाकी भगवान कहे कि माया अध्यक्ष में प्रकृति स्वेत सिद्ध रहता है, तो माया भगवान का अर्थ कैसे हमें कैसे करता है, तो ये है उल्टा कंसेप्ट
जी,
मायावाद
जी। हाँ वही मतलब, अगर आप मतलब सविशेष नहीं है वो, सविशेष भगवान की विशेषताओं को जो है वो मतलब उसके बारे में उसको ज्ञान, एक्चुअली वही सटल डिफरेंस जो मैं समझता हूँ ये है कि ही डजंट ऑफेंड कृष्णा बाई सेइंग कि आपका रूप नहीं है, ही मे नॉट नो, आपको नहीं मालूम इज अ डिफरेंट थिंग, आपको मालूम है और आप जानबूझ के उल्टा बोल रहे हो, या आप उसको मान के राजी नहीं, आपको दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट ऐसा है, आप नहीं मान रहे, आप उसको आप तब आप क्योंकि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट, इसलिए गौण वाद मुख्य व्यक्ति की बात करें, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बता रही है, पर अगर आप गौण वृत्ति से आप उसको इंटरप्रेट करेगा तब ये बता सकते हो नहीं है, तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना तब ये जाके जो है ये मायावाद कृष्ण के अपराध करने के लिए भी, एक्चुअली अपराध होता नहीं है, एक्चुअली अपराध किया जाता है, तो यानी कि आपने मेहनत करी उसके पीछे कि भाई ये शब्द को मोड़ना है ना, क्योंकि ये मेरी थ्योरी के हिसाब से सूट नहीं कर रहा, तो कैसे घुमाऊं उसको, तो फिर तब जाके आप गौण वृत्ति का आश्रय इस वजह से ले रहे, तो तब जाके वो चीज मायावाद बनेगी, नहीं तो ही मे नॉट नो द फुल कंसेप्ट। ओके जी जी, हम कहते हैं वो नहीं कहते, वो अपने आप को अद्वैतवादी कहते हैं,
लेकिन शंकराचार्य का स्टेटमेंट मायावाद नहीं है, जो
जी उन्होंने ब्रह्मवाद सिखाया, उन्होंने ब्रह्मवाद सिखाया। जी
शंकराचार्य की जो बौद्ध की भाष्य है, जो वेदांत
जी,
तो वो मायावाद के ऊपर आधारित नहीं
है, तो शास्त्र पर आधारित है, ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड वेरी सेफ टू रीड।
प्रभुपाद दोनों प्रश्न निर्विशेष शून्यवाद
जी जी,
तो शून्यवाद है कि बहुत नास्तिक है, कुछ नहीं है, यह माया होगा।
उसके तो माया भी नहीं है ना, शून्य का मतलब शून्य ही है फिर। हाँ वो तो क्या, उसके लिए शून्यवादी के लिए माया भी कुछ नहीं है, शून्य के लिए सिर्फ शून्य है बस, उसके लिए कोई माया
नहीं।
जी जी एकदम ब्रह्म नहीं नहीं तो ये ना हम ब्रह्मा पूछे प्रतिष्ठा हम, तो दैट इज द सोर्स ऑफ ब्रह्म, तो ब्रह्म का जो बेस है वो भगवान है। वो लेटर ऑन है ना, सृष्टि तो आप, सृष्टि का मतलब क्या हो गया, वो तो बाई प्रोडक्ट कह सकते हो आप उसको, तो वो वन एंड डिफरेंस की थ्योरी आ जाती है वहां के अंदर कि वो भगवान से निकली है इसलिए ठीक है, आई मीन भगवान का पार्ट है, बट वो भगवान अपने आप में नहीं है, जैसे जीव है चाहे वो तटस्थ शक्ति है, तो पर इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो जीव और भगवान बराबर माने जाएंगे। हाँ शक्ति हो गई ना भगवान की जी जी जी, ये सारे श्लोक इसमें इस्तेमाल हुए
जी,
वो तो जो मर्जी कहते रहेंगे उसका क्या है, वो तो उसमें क्या है, माया कल को बोलेगा मैं हूं, कोई लिमिट थोड़ी है उसकी। जब वही बात हुई थी ना, जैसे इसलिए शुरुआत में बोला कि जब मूर्ख व्यक्ति बोल रहा है तो चुप रहना ठीक है, एक तो वो कुछ भी बोलेगा, फिर बोलेगा नहीं जी ये ऐसा है वैसा है, तो इट हैपन्स, हम लोग एनकाउंटर करते हैं जब, आई मीन जिनकी आप बात कर रहे हैं दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट सम पीपल हु आर वेरी लर्नड, जिनसे बात करी जा सकती है। आप जो उसको ये डिफरेंस समझा रहे हैं कि ब्रह्म है माया है, इसका मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति की, आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिस मतलब जिसके भेजे में कुछ बात पढ़ सकती है, उसने कुछ खुद कुछ किया हुआ है। तो आमतौर पर जो लोग में मिलते हैं जो मतलब मायावादी, उनका कोई बेस नहीं होता, उनको आप किसको मानते हो, उसका उसको एक सांस में बोल जाएगा मैं शंकराचार्य, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, ये आपके गुरु नानक जी और ये और ये आपके महाप्रभु, सबको मानता हूँ, आप किसी को नहीं मानते। इट बिकम्स अ वेरी वो, तो वो जो फिलोसफी, व्हाट इज दैट फिलोसफी, दैट ऑल्सो कम्स इन टू द परव्यू। अब जब भक्ति सरस्वती ठाकुर ने बुक लिखी, वो पतली सी बुक है, नहीं 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 नॉट माय, वो सतदूषण नहीं, वो तो दूसरे, वो तो प्राकृत रस, इट्स अनदर बुक, भूल गया वो बुक है। उस किताब में अगर आप उसको पढ़ोगे, वो किसी को नहीं छोड़ा, मतलब जितने भी वाद चलते हैं, जितने भी सो कॉल्ड धर्म चलते हैं, वॉज वेरी रिजिड, एक ही गौर, मतलब वैष्णविज्म को छोड़ के किसी को भी नहीं छोड़, सारे सब में गलती निकाल दी, ये है यहां पर ये गलत है, यहां ये गलत है, यहां ये गलत है, यहां ये गलत है, उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, पर यह बताने के लिए कि आप ये मत, ये वैष्णविज्म के अलावा फुल प्रूफ थ्योरी नहीं है कहीं पे भी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह गई, तो इट इज देयर। अब वी मे डिफाइन इट कि वो, हम लोगों ने इसकी परिभाषा दी, चलो ये वाला कंसेप्ट ये मायावाद है, ये वाला कंसेप्ट ये शून्यवाद है, ये वाला कंसेप्ट, पर जब वो मिक्स होता है, जब उसका हाइब्रिड बनता है, तब क्या होता है, कितने लोगों में मिलते हैं जो मतलब प्योर मायावादी हैं, कितने लोगों में मिलते हैं जो प्योर शून्यवादी हैं। आप बौद्धवाद की बात करें तो बौद्धवाद में कम से कम आप देखेंगे, आप श्रीलंका जाओ डिफरेंट वर्जन है, आप इधर इंडिया में देखो डिफरेंट वर्जन है, आप तिब्बत में जाओ डिफरेंट वर्जन है, आप जापान में जाओ डिफरेंट वर्जन है, कौन सा बौद्धवाद है, कौन से बौद्धवाद को शून्यवाद कह रहे हैं, कौन सा वाला बौद्धवाद, तो वो भी नहीं डिफाइन कर सकते। एक बौद्धवादी है जो बुद्ध की प्रतिमा को पूछते हैं, एक बौद्धवादी जो नहीं पूछते हैं, एक कहते जी बड़ा प्रोसेस है, एक कहते जी छोटा प्रोसेस है, क्या है भाई? तो यू नो लाइक आप किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम उसके सोर्स पे जाते हैं कि एक आप कहते हो कि भाई ये शून्यवाद है, शून्यवाद का अथॉरिटी कौन है करंटली? वी डोंट नो. मायावाद की करंट अथॉरिटी कौन है? वी डोंट नो. सो ओरिजिनल जब वो चीज आई है तो ओरिजिनल जब जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि शंकराचार्य है तो ओके ईस्ट वाकिंग और ब्रह्मवाद. ठीक है, अब जब उन्होंने बुद्ध की पूजा करी है एज बुद्ध, वो कहां जाएंगे? वो शून्य में जाएंगे? नहीं जाएंगे. और बुद्ध की कन्वर्टिव फिलोसफी को जो फॉलो करेंगे वो सारे हम शून्य में जाएंगे. आप कहते हैं कि बुद्ध को बुद्ध की पूजा करके वो शून्य में जाएगा, तो फिर ये दस अवतारों में बुद्ध भी है, पर बुद्ध की को पूजा बुद्ध की तरह भगवान की तरह करेगा तब ना? तो चीज तो जब चीज मिक्स होती है देन उसका देयर इज नो एंड टू इट. देयर इज नो एंड. यू कैन नॉट लिमिट द मिक्सिंग कि इतना तक जो है हम इसको मायावाद कहेंगे, इतना तक हम शून्यवाद कहेंगे. देयर इज नो डेफिनेशन. पॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन है? करप्शन का क्या डेफिनेशन है? मुझे बताइए. हाउ डू यू मेजर इट? इट्स अ करप्शन ऑफ फिलोसफी. तो कोई डेफिनेशन नहीं. इट मे स्टार्ट लाइक दिस. हम बताते थे इसका ओरिजिन ये था, अभी क्या है? अगर साहजियाज्म का ओरिजिन क्या था जी? 400-500 साल रूप कविराज से वहां से शुरू हुआ था. तो अभी जो साहजियाज्म है वो रूप कविराज भी सर पकड़ लेगा, भैया ये इतना तो मैंने भी नहीं बोला था. लाइक दिस लाइक दिस. तो मायावाद के इनिशियल जो गुरु रहे हैं, चाहे वो आप शंकराचार्य की बात करें, उससे ऊपर जाते हैं गोविंदपाद है, गौरपाद है, बाकी उनकी बात करी कर लेंगे, क्या वो फॉलो करते हैं वो लोग जो अभी आज के लोग हैं? नहीं फॉलो करते. कोई सिद्धांत नहीं है ना, सिद्धांत फॉलो करने वाला कोई नहीं. आधार तो हर कोई पहले बोलेगा मेरा सिद्धांत भी वेद पर आधारित है, आपका सिद्धांत वेद पर आधारित है. जो शुरू तो ऐसे ही करेगा आदमी. आधार तो सबसे पहले वही बनाता है कि जी जो चीज चली हुई है उसके ऊपर अपना आधार लगा लो आप. हमें जो वेद यहां पे तो वेद आधार है, ये आधार है. अब आप मायावाद की बात कर रहे हैं, शून्यवाद की बात कर रहे हैं, चाहे बौद्धवाद की बात कर रहे हैं, चाहे वैष्णववाद की बात कर रहे हैं. आप यूएस में जाइए, उनके लिए सारे बराबर है. हम मानते हैं वो आस्तिक हो गया, आस्तिक हो गया ना. वही कह रहा हूं, देखिए ना, आस्तिक का मतलब क्या है? जो वेद मानता है. ठीक है ना, आपको वेद का आधार लेके जो है भगवान की सत्ता को काट रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना. आप क्या कहते हैं? वेद के आधार पर वो भगवान को काट रहा है. आप वो वेदांत सूत्र बोलते हैं तर्क प्रतिष्ठानाथ, तर्क प्रतिष्ठा सूत्र विभिन्न, अभी तो आ जाते ना तर्क प्रतिष्ठा. स्थापित करने का मतलब क्या है? जी भाई मैं मानता ही नहीं ना आपका वेद.